स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवारों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि समुद्र और पृथ्वी से निकले दो पशुओं को और उनके कुकर्मों को देखने के बाद यहोना के दर्शन में परिवर्तन आता है। वह सिय्योन पर्वत पर मेमने को अर्थात प्रभु यीशु को 144,000 मनुष्यों के साथ देखता है। वे पवित्र एवं निर्दोष थे और परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए थे। इन ईश्वर भक्तों ने न तो महाक्लेश के समय पापों में सहभागिता की थी और न ही पशु के झूठ पर विश्वास करके उसकी पूजा की थी। वे सब अपने उद्धार का गीत गा रहे थे। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए भी सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हम विनती करते हैं पिताजी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, उनके जीवन से बोले और बातचीत करें, ताकि आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हम सबसे बोलने और बातचीत करने पाए, हमारे जीवन को छूने और स्पर्श करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम अपने अध्ययन के क्रम में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे सनातन सुसमाचार की घोषणा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14 अध्याय और 6 और 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। मेरे मित्रों, यहां पर लिखा है कि एक और स्वर्गदूत, यह पृथ्वी के साथ परमेश्वर के शिष्टाचार में एक और गंभीर परिवर्तन लाता है। पद 8 और 9, फिर 15, 17 से 18 में प्रकट होने वाले 6 और स्वर्गदूत की श्रृंखला में पहला स्वर्गदूत है। हमारे युग में सुसमाचार मनुष्य को सौंपा गया था कि वे सुसमाचार के संदेश वाहक हैं। स्वर्गदूत तो चाहते हैं कि वे सुसमाचार सुनाएं, परंतु उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। महाक्लेश के आरंभ में मनुष्य परमेश्वर का संदेश वाहक है, जैसा कि ये 144,000 जन प्रकट करते हैं। अलौकिक शक्ति वाले वे 2 गवाह भी शैतान के सामने खड़े नहीं हो पाए थे और पृथ्वी पर शैतानी परिदृश्य में से हटा लिए गए थे। पुराने नियम के संदेशवाहक स्वर्गदूत और मनुष्य दोनों थे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले का ठीक ठीक बदला मिला। महाक्लेश के समय परिस्थितियां ऐसी दुर्गम होंगी कि स्वर्गदूत ही परमेश्वर का संदेश संसार को सुना पाएंगे, क्योंकि स्वर्गदूत अविनाशी हैं। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। कुछ वर्ष पूर्व यह वक्तव्य निंदा का विषय था और बाइबल के आलोचक इसकी हंसी उड़ाते थे, परंतु आज की पीढ़ी जो सैटेलाइट टीवी देखती है, उसके लिए यह निंदा या उपहास की बात नहीं है। विश्वव्यापी टीवी एक व्यवहारिक सत्य है और हमें समाचार पत्र के आने की प्रतीक्षा नहीं करना होता है। हम दुनिया की कोई भी घटना सही समय पर सजीव देख सकते हैं। यह स्वर्गदूत जिसे यहुना आकाश के मध्य उड़ता हुआ देख रहा है, वह संसार के लिए प्रसारण केंद्र का काम करेगा। आगे लिखा है सनातन सुसमाचार। यह सुसमाचार कैसे हुआ? क्योंकि सुसमाचार का अर्थ है शुभ संदेश। क्या यह स्वर्गदूत सुसमाचार सुना रहा था? जी हां, यह उन लोगों के लिए सुसमाचार है जो परमेश्वर की संतान हैं, परंतु अविश्वासियों के लिए यह एक बुरा समाचार है। कहता है परमेश्वर से डरो, यह सनातन सुसमाचार का संदेश है। नीति वचन का लेखक लिखता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है। उस स्वर्गदूत के कहने का अर्थ है कि परमेश्वर के लोग बुद्धि ग्रहण करें, सूझबूझ वाले बनें, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको बचाया है, परंतु वह इस पृथ्वी का न्याय करेगा। यह परमेश्वर की अंतिम पुकार है। वह न्याय करने वाला परमेश्वर है, वह न्याय करने के लिए आने वाला है। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि बेबीलोन के दंड की घोषणा है। इस अध्याय में परमेश्वर हमारे सामने उन लोगों को ला रहा है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में फिर एक बार सामने आएंगे, परंतु वह हमें अपना आगे का कार्यक्रम दिखाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने वे विचार को कोपमय मदिरा सारे जातियों को पिलाई है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं बेबीलोन के बारे में किसी ने कहा है कि वह आरंभ ही से शैतान का मुख्यालय रहा है। बेबीलोन ही से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है। निमरोद की पत्नी का नाम सेमिरा मिस था। कुछ लोगों का मानना है कि वह निमरोद की मां थी और उसने अपने ही पुत्र से विवाह किया है। वह बेबीलोन की रानी थी। बेबीलोन का पुराना नाम बाबुल था। इस स्त्री ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जिसमें वह फुरात नदी से एक अंडे में निकलती है। वह अंडे का छिलका तोड़कर पूर्ण विकसित बाहर निकली। सेमिरा मिस की उपासना में ईश्वरत्व का स्त्री रूप प्रकट हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि बेबीलोन झूठे धर्म का शिरोमणि है, इसलिए यहां पर लिखा है गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। यह स्वर्गदूत आगे आगे जाकर आने वाली घटनाओं की घोषणा इस प्रकार करता है कि जैसे वह पूरी हो गई है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन ऐसा निश्चित है कि भावी घटना को भूतकाल में व्यक्त करें तो संदेह का स्थान नहीं है। वह ऐसा निश्चित है जैसे कि वह इतिहास बन गया है। बेबीलोन नगर का पुनः निर्माण होगा। मेरा मानना है कि प्राचीन बेबीलोन का पुनः निर्माण फिर से होगा, परंतु यथास्थान नहीं, और यशायाह द्वारा उसके दंड की भविष्यवाणी भी पूरी होगी। बेबीलोन की मूर्ति पूजा एक अलौकिक नशा होगा जो संपूर्ण विश्व को आकर्षित करेगी। यही कारण है कि आज हम शैतान की पूजा, भूत सिद्धि और अन्य प्रकार की पूजा पद्धतियों को निश्चय ही शैतानी मानते हैं। इन सब में मनुष्य का प्रयोग इतना अधिक स्थान रखता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए इस विषय में पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता क्या कहते हैं। यर्मिया नबी की पुस्तक 51 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से दिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। यदि आप दूर से इस पृथ्वी को देख पाएं, तो मेरे विचार में आप मानव जाति और संसार की विभिन्न जातियों से निराश ही होंगे। यहोवा के वचन में हमें मिलता है जहां पर वह कहता है यशायाह नबी के द्वारा से 13 अध्याय उसके 11 में, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। जगत का परमेश्वर आएगा। अब देखिए यशाया 13 उसके 19 में लिखा है, बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा, जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। मेरे मित्रों, यह बेबीलोन का दंड है और इसके विषय में हम देखेंगे अध्याय 17 में धार्मिक बेबीलोन का दंड और अध्याय 18 में व्यापारिक बेबीलोन का दंड व्यक्त किया गया है। पशु का चिन्ह लेने वालों को भी दंड है। यह सच है कि महाक्लेश में बचने वालों ने पशु का चिन्ह लिया, परंतु संपूर्ण महाक्लेश का कारण शैतान की स्वतंत्रता नहीं, इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु का दंड है। वह इस पृथ्वी पर अपने विरुद्ध उठे हुए विद्रोह का दमन करने के लिए स्वयं आएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसके 9 से 12 पद में आगे हम पढ़ते हैं, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, वह उस जन समुदाय से कह रहा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। वे पुराने नियम की व्यवस्था को मानते हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है कि महाक्लेश और प्रभु राज में भी बलिदान चढ़ाए जाएंगे। इस अध्याय में स्पष्ट प्रकट किया गया है कि पशु के शासनकाल के कठिन समय में मध्य मार्ग अपनाना मनुष्य के लिए असंभव होगा। आज भी हम अनेक विश्वासियों को देखते हैं कि वे समय के अनुसार जीवन जी रहे हैं। अध्याय 13 में हमने देखा था कि पशु के चिन्ह को ग्रहण नहीं करना एक भयानक निर्णय था जिसका परिणाम भूखों मरना है। दूसरी ओर जो उसके चिन्ह को ग्रहण करेगा वह परमेश्वर के दंड का भागी होगा। यहां पर लिखा है वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा पिएगा। यह पुराने नियम से भजन संहिता 75 के 8 का रूपक है। लिखा है यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है, निश्चय उसको तल छट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग ही पी पाएंगे। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने यह विषय अपना लिया था। उन्होंने परमेश्वर के क्रोध के कटोरे का लबालब भरते हुए देखा। परमेश्वर धीरज धरता गया और मनुष्य पाप में गिरता गया, परंतु जब उसके क्रोध का कटोरा भर गया तब परमेश्वर उसे अभक्त मनुष्यों को बलपूर्वक पिलाएगा। विद्रोही मनुष्य इसको बढ़ाता रहेगा जब तक कि दंड ना आ जाए। मेरे मित्रों, यदि आपका मानना है कि कलीसिया महाक्लेश में होगी तो आपको यह भी मानना होगा कि प्रभु यीशु कलीसिया को क्रोध का कटोरा पिलाएगा। मैं तो कभी नहीं मान सकता कि प्रभु यीशु अपने लहू से मुक्ति दिलाई गई कलीसिया के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। लिखा है आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। यह चाहे वास्तविक हो या अन्य कुछ हो, यह तो निश्चित है कि यह आग और गंधक के जलने से भी अधिक खतरनाक होगा। यह एक प्रतीक है और स्मरण रखें कि यह वास्तविक और हमारे लिए भी वास्तविक है जो इसका एक प्रतीक है। यह किसी घटना की सच्चाई का सार है। सार का अर्थ है कि किसी बात का संकेत देना, जैसे हल्की सी सुगंध प्रकट कर देती है कि वह एक इत्र है। अतः वास्तविकता प्रतीक से कहीं अधिक भयानक होगी। परंतु सदोम में गिरने वाली गंधक की आग वास्तविक थी। यदि आप नरक से बचना चाहते हैं तो इस तथ्य को मन मस्तिष्क में बसा लें। इस अध्याय में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु और स्वर्गदूतों के समक्ष नरक एक प्रकट दृश्य है। नरक 24 प्राचीनों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हम यह मान लें कि पृथ्वी की घटनाएं कलीसिया से छिपी हुई हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि महाक्लेश की घटनाएं कलीसिया को दिखाई नहीं देंगी, परंतु प्रभु यीशु और पवित्र स्वर्गदूत उसे देखेंगे। महाक्लेश में परमेश्वर के जन जो कर सकते हैं वह यह है कि धीरज धरकर प्रभु यीशु के आने की प्रतीक्षा करें। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वह क्यों धीरज धरे? वह इसलिए धीरज धरेगा कि उस पर पवित्र आत्मा की मुहर है और वह प्रभु यीशु की धार्मिकता धारण किए हुए है। वह मेमने के लहू के कारण जयवंत होगा। लुका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 19 पद में हमारा प्रभु यीशु कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। उन्हें बस धीरज धरना होगा कि आंधी निकल जाए, महाक्लेश में वे सही रहेंगे। आगे हम देखते हैं प्रभु में मरने वालों की स्तुति। इस पद को दफन के समय पढ़ा जाता है, परंतु इस प्रकार इसका प्रसंग अर्थहीन हो जाता है। यह पद केवल महाक्लेश से संबंधित है। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13 पद को। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मेरे प्रियो, महाक्लेश में परमेश्वर के भक्त 144,000 चुने हुए तथा अन्य अनेक जो अन्य जाति से उद्धार पाए हुए हैं, वे प्रभु के नाम में शहीद होंगे। महाक्लेश के समय वे जीने से अधिक मरना पसंद करेंगे। उस समय यह पद शांतिदायक होगा, आश्वासन का आधार होगा। उन्हें अपने कष्टों से विश्राम प्राप्त होगा, उनके काम उनके साथ होंगे और परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि यह पद सुख पाने वाले समृद्ध मनुष्यों के लिए नहीं है, यह मेरा मानना है। हमारे लिए मरने की अभिलाषा एक अस्वाभाविक बात है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 23 से 26 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। मेरे मित्रों, मैं तो चाहता हूं कि यहां और भी अधिक समय तक रहकर परमेश्वर के वचन की शिक्षा दूं। मुझे स्वर्ग जाने की जल्दी नहीं है। एक बार एक लड़का आराधना में गया। आराधना के समय प्रचारक ने पूछा, आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? इस लड़के को छोड़ सब ने हाथ उठा दिया। प्रचारक ने पूछा, बेटे, क्या तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहते? लड़के ने कहा, क्यों नहीं, परंतु मैं सोच रहा हूं कि आज के लिए आपके पास सवारियां बहुत हैं। मेरे प्रियो, मैं भी उस जाने वाली भीड़ में नहीं होना चाहता हूं। मैं स्वर्ग तो जाऊंगा ही, परंतु मैं यथासंभव जितना अधिक हो सके सेवा करना चाहता हूं। आज मेरे लिए मृत्यु को चुनना विचित्र है, परंतु महाक्लेश की बात कुछ और होगी। वे दुख के साथ धीरज धरकर प्रतीक्षा करेंगे। उनका शहीद होना एक अति उत्तम बात होगी। जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। वह उनकी प्रभु भक्ति का प्रतिफल देगा। अतः आप देख सकते हैं कि यह पद किसी भी मृतक के लिए और विशेष करके सुख का जीवन जीकर मरने वाले के लिए प्रासंगिक नहीं है। एक बार एक बहुत धनवान मनुष्य मर गया। उसका संपूर्ण जीवन राजसी ठाट बाट के साथ बीता था। उसके दफन पर पादरी ने यह पद पढ़ा। यह परमेश्वर के वचन का भयानक दुरुपयोग है। मृत्यु का मूल्य महाक्लेश में महान होगा। आज के विलासी मसीही जनों के लिए यह नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनके विश्वास योग्यता, उनका धीरज और उस समय किए गए उनके कामों के कारण उन्हें प्रतिफल दिया जाएगा। परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं करता है, परंतु हमारे कामों का प्रतिफल अवश्य देता है। हमारे काम चाहे अच्छे हों या बुरे, वे हमारे साथ प्रभु यीशु के न्याय आसन तक जाएंगे और उसका प्रतिफल हमें अवश्य मिलेगा। मेरे श्रोता मित्रों, आज हमें विचार करना है कि हमारे कार्य किस प्रकार के हैं। हमें जो प्रतिफल मिलेंगे वे किस प्रकार के प्रतिफल मिलेंगे। वे जो सताए हुए लोग थे, मसीह के कारण सताए गए थे, उन्होंने परमेश्वर के प्रतिफल को पाया। उनके लिए स्वर्ग था, लेकिन आपके लिए क्या है? आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीष प्राप्त की है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर पहचान कर मसीहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे तेरी शान में मसीहा, तेरी आँख